नमस्कार। एक बात समझ में आ रही है कि मौजूदा सरकार को मुस्लिम बहनों की बहुत फिक्र है। उसे 33% जो महिला आरक्षण बिल है उसकी इतनी परवाह नहीं है जो सालों से अटका हुआ है, लेकिन 3 तलाक को लेकर जो बिल है जिसे वो कानून बनाना चाहते हैं उसको लेकर उनको बहुत जल्दी है। दरअसल 3 तलाक इस्लाम में जायज़ माने गए हैं। ये इंस्टेंट 3 तलाक जो हैं, इंस्टेंट ट्रिपल तलाक, उसको लेकर यह बिल बनाया गया है। अब दोनों का फर्क सीधा साधा यह है कि जो ट्रिपल तलाक होता है उस पर पहली दफे तलाक बोला, फिर उसके बाद वक्त मिलता है, इद्दत का वक्त बोलते हैं उसे, और शौहर और बीवी और बच्चों को साथ रहना पड़ता है उस इद्दत के पीरियड में। ठीक है, अगर उस वक्त समझौता हो जाए या जिस्मानी ताल्लुकात हो जाएं और सब ठीक ठाक हो जाए तो वो तलाक तलाक नहीं माना जाएगा। अगर नहीं होता उस इद्दत के पीरियड के बाद भी तो तलाक माना जाएगा। और वैसे ये भी एक प्रावधान है कि अगर 1 तलाक बोल दिया और बात बन गई तो फिर दूसरा और तीसरा तलाक कभी भी कहा जा सकता है, 5 साल बाद भी, 10 साल बाद भी। माने 3 तलाक का जो प्रोविज़न है वो इतना, उसमें इतनी इंसानियत है, स्कोप है, ये एक तरह से वार्निंग्स हैं कि भाई इतना टाइम दिया जा रहा है आपको, आप देख लीजिए अगर अब मामला सुलझ जाए तो। उधर जो इंस्टेंट ट्रिपल तलाक है कि एक हस्बैंड ने 3 दफ़े, एक शौहर ने 3 दफ़े अचानक बोल दिया तलाक तलाक तलाक, तो उसे तलाक मान लिया जाएगा, ये बिल उसके खिलाफ है। ठीक है, लेकिन इसमें पेंच है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि ये अनकॉन्स्टिट्यूशनल है। सरकार इसे बिल के जरिए गुनाह बनाना चाहती है, क्राइम बनाना चाहती है, यानी जो सिविल एरिया है उससे निकाल कर क्रिमिनल एरिया में लाना चाहती है। अब अगर किसी ने 3 तलाक बोल दिए इंस्टेंट तलाक तलाक तलाक, और अगर वो औरत पुलिस पे शिकायत कर दे तो शौहर को, हस्बैंड को 3 साल की सज़ा हो सकती है। पेच इसमें यह है, कॉन्ट्रडिक्शन ये है कि अगर ये क्राइम है, गुनाह है कानूनन 3 तलाक एक साथ बोलना, तो इसका मतलब वो 3 तलाक मान्य नहीं है कानून में, वो 3 तलाक हुए ही नहीं है क्योंकि वो क्राइम है। उस पर आप शौहर को जेल भेज रहे हैं और साथ में जिम्मेदारी दे रहे हैं कि पूरे परिवार की जो देख रेख है उसका खर्चा वो देगा जेल से। तो इस बात को लेकर जो कन्फ्यूजन है, ये जल्दबाजी इन्होंने फिर करी है। हर काम इन्होंने सही किए हैं, जैसे नोटबंदी बहुत सही काम किया था, GST बहुत सही काम किया था, इनके हाथों से काम ही सारे सही होते हैं। इस काम में भी अब देखिए कितनी बड़ी कॉन्ट्रडिक्शन है, कितना बड़ा विरोधाभास है कि जिस ट्रिपल, इंस्टेंट ट्रिपल तलाक को आप क्रिमिनल के दायरे में ला रहे हैं, क्राइम के दायरे में ला रहे हैं, क्राइम डिक्लेयर होते ही वो तलाक नहीं रहता है। अगर तलाक नहीं रहता है तो शौहर को जेल क्यों भेजा जा रहा है, शौहर को जेल क्यों भेजा जा रहा है? और शौहर अगर जेल में है तो वो किस तरह से ख्याल रखेगा अपने परिवार का? तो इस पर राज्यसभा में इनको मुश्किल का सामना करना पड़ रहा है क्योंकि इनकी संख्या कम है मौजूदा सरकार की, जो रूलिंग पार्टी है उसकी। उसमें राज्यसभा में विपक्ष का कहना है कि इसे सिलेक्ट कमेटी को ये बिल रेफर किया जाए ताकि इन तमाम पॉइंट्स पर चर्चा हो। अब क्योंकि चुनाव का वक्त है और संदेश ये देना है कि हम मुस्लिम बहनों के साथ हैं और मुस्लिम मर्दों को हम सजा देते हैं जो इंस्टेंट ट्रिपल तलाक देते हैं, संदेश तो जा चुका है लेकिन कानून में खामी है, कॉन्ट्रडिक्शन है, ये ऐसे चल नहीं सकता है। ये बड़ी अच्छी बात है कि जो जाहिल मुसलमान हैं जो इंस्टेंट ट्रिपल तलाक देते हैं उनको सज़ा हो, लेकिन कम से कम कानून तो सही बनाइए, उसे सिविल के ही दायरे में रहने दीजिए, उसे क्रिमिनलाइज मत कीजिए क्योंकि उसका कोई मतलब नहीं रह जाता। मेरे दोस्त हैं नदीम अख्तर, फेसबुक पे हैं, उनका ये कहना है इस बात को लेकर कि BJP की जो ख्वाहिश रही है, कानून तो उनको मंदिर बनाने के लिए लाना था, कानून तलाक पर बना रहे हैं। कहीं ऐसा ना हो कि ना खुदा ही मिला, ना विसाले सनम, ना इधर के रहे ना उधर के रहे। शादी कोई तलाक देने के लिए नहीं करता है। अब मियां बीवी के झगड़े भी सरकार सुलझाएगी क्या? ये ठीक उसी तरह बैकफायर कर सकता है जैसे अटल बिहारी वाजपेयी के दिनों में पोटा नाम का कानून बैकफायर कर गया था। तो अब ये संतों के हाथ हैं, जो काम हाथ में लेते हैं वो ठीक हो ही नहीं रहा है, वक्त भी इनके हाथ से फिसल चुका है, देखते हैं आगे ये क्या करते हैं। सिक्के का दूसरा पहलू, क्या छोड़ी हुई औरतें सिर्फ मुसलमान हैं? मैं आपको मर्दमशुमारी जिसे बोलते हैं, जनगणना, सेंसस, सेंसस के फिगर्स बताता हूँ, ये बिजनेस स्टैंडर्ड में छपे हैं। इनके मुताबिक 23 लाख महिलाएं भारत में ऐसी थी सन 2016 तक, उसके बाद का मालूम नहीं है। 2016 तक 23 लाख महिलाएं ऐसी थीं जिनको उनके शौहर ने, उनके पति ने छोड़ दिया था, ठीक है, सेपरेट या अलग रह रहे थे या छोड़ दिया था, अबेंडन कर दिया था। इसका मतलब ये है कि जो तलाकशुदा औरतें हैं उनसे दो गुना ज़्यादा ऐसी औरतें हैं जो या तो अलग रहती हैं अपने हस्बैंड से, अपने शौहर से, या जिनको शौहर ने, उनके पति ने छोड़ दिया है एकदम बिना तलाक दिए ही। इसमें 20 लाख महिलाएं हिंदू महिलाएं हैं, ठीक है, और वो आर अबैंडन्ड और सेपरेटेड। सेपरेटेड तो शादीशुदा हुई, और जो अबैंडन्ड है, जिनको छोड़ दिया है, उनमें विधवाओं की संख्या बहुत ज़्यादा है। आप वृंदावन चले जाइए, आप बनारस चले जाइए, आप हरिद्वार चले जाइए, ये हमारे यहाँ की एक परंपरा रही है कि जैसे ही एक औरत विधवा हुई और बुज़ुर्ग हुई, उसके परिवार वाले ही उसको वहाँ छोड़ आते हैं। शेल्टर होम्स बने हुए हैं, शेल्टर्स बने हुए हैं विधवाओं के लिए। तो कुल मिलाकर अगर संख्या देखी जाए तो 20 लाख हिंदू महिलाओं की संख्या बनती है, 2,80,000 मुस्लिम महिलाओं की संख्या बनती है जिनको छोड़ दिया गया है या तलाकशुदा हैं जो, और 90,000 क्रिश्चियंस और 80,000 बाकी दूसरे धर्म हैं। अब सवाल ये है कि सरकार को क्या इनकी चिंता नहीं है, सिर्फ मुस्लिम बहनों की चिंता है, हिंदू बहनों या हिंदू बीवियों या हिंदू माओं की चिंता नहीं है जिनको उनके परिवार वाले छोड़ देते हैं, उनके लिए सरकार क्या कर रही है? देखना यह है कि चुनाव के दिनों में इसको कितना भुनाया जाता है वोट के लिए, इस सेंसिटिव मसले को, जो परिवार का मसला होता है, उसको सिविल के दायरे से निकाल कर क्रिमिनल दायरे में ले आए हैं ये लोग। आगे देखते हैं क्या होता है, राज्यसभा में ये बिल सिलेक्ट कमेटी को रेफर होता है या नहीं होता। नमस्कार। पिछले कुछ दिनों से महाराष्ट्र के भीमाजी कोरेगांव में बहुत ही टेंशन छाई हुई थी, बहुत ही तनाव था, क्योंकि पिछले साल 1 जनवरी को वहाँ पर झगड़े देखे गए थे, दंगे देखे गए थे, महार मेमोरियल जो है वहाँ पर देखे गए थे, और उसके पीछे ब्राह्मणवादी ताकतों का हाथ माना गया था। संभाजी भिड़े, जिनकी बहुत इज्जत है उन सर्कल्स में, आरएसएस के सर्कल्स में भी और भारतीय जनता पार्टी के भी, उनको इसके पीछे माना गया था। उनका वैसे दावा है कि उनके बाग के आम खाकर यकीनन शर्तिया लड़के ही पैदा होते हैं। बहरहाल, जो दूसरे लोग थे उन पर केसेस हुए, अर्बन नक्सल्स नाम का शब्द सामने आया शब्दावली में, अर्बन नक्सल्स, और बुज़ुर्ग लोगों को जो शहरों में रह रहे हैं, जो वामपंथ के इंटेलेक्चुअल माने जाते हैं, बुद्धिजीवी माने जाते हैं, उन पर सेडिशन के, राष्ट्रद्रोह के केसेस दर्ज हुए, लेकिन दूसरी पार्टी पर नहीं हुए। इस साल बहुत तनाव था और बहुत ख्याल रखा गया था। दरअसल मैं आपको बताऊँ ये पूरा किस्सा है क्या, थोड़ी सी हिस्ट्री मैं आपको बता दूँ। दिसंबर सन 1817 की बात है ये, 1817, तब अंग्रेज़ों का राज था। अंग्रेज़ों का राज पूरे भारत पर नहीं था, लेकिन अंग्रेज़ों को खबर मिली कि जो पेशवा हैं पुणे के, उनका इरादा है हमला करने का पुणे पर, ठीक है, और उन्होंने शिरूर से फिर मदद मांगी अंग्रेज़ों ने। वहाँ से जो फौजें आईं शिरूर, वो पेशवा फोर्सेस से, उनका पेशवा की फौजों से उनका आमना सामना पुणे के रास्ते में हुआ। भीमा कोरे गांव वो जगह थी जहां पर ये जंग हुई, जनवरी 1, 1818 को, 1 जनवरी 1818। पेशवा बाजीराव द्वितीय, उनकी फौज बहुत ज़्यादा थी, नंबर्स को लेकर, कितने संख्या को लेकर थोड़ा बहुत डिस्प्यूट है, लेकिन 20,000 से 25,000 के बीच थी, ठीक है, जबकि जो अंग्रेज़ों की फ़ौज थी वो करीब 900 थे सिर्फ, जिसमें महार थे, कुछ मराठा भी थे, राजपूत थे, मुसलमान थे और यहूदी भी थे। लेकिन ये जो जंग हुई, ये इसमें अंग्रेज़ों की विजय हुई, हालांकि उनकी फ़ौज बहुत कम थी, फिर भी उनकी जीत हुई, डिसाइसिवली वन बाय कंपनी फोर्सेस, ऐसा लिखा गया। ये जो मैं आपको पढ़ रहा हूँ, ये फीचर स्टोरी करी थी हिंदू में कार्तिक वेंकटेश ने 8 जनवरी 2018 को, ठीक है, पिछले साल की बात है ये। मैं उसके कुछ हिस्से आपको बता रहा हूँ, उस पर आधारित मैं आपको बता रहा हूँ। उसके बाद फिर क्या हुआ कि जो ब्रिटिश पावर है, जो ब्रिटिश ताकत है, वो बढ़ती गई, और जो ब्राह्मण ताकत थी उसको मराठा ताकत का भी नाम दिया गया, वो कम होती गई। और वैसे जो इसे दलितों की जीत माना गया, क्योंकि महार बहुत थे इसमें, जितने जो शहीद हुए इनके महारों के लोग मारे गए, उन्होंने अपना एक मेमोरियल वहाँ पर बनाया जहाँ हर साल 1 जनवरी को वो लोग उनको याद करते हैं, अपने शहीदों को याद करते थे। दलितों की जो हालत थी पेशवा के राज में, उसमें राम पुन्यानी हैं, प्रोफेसर राम पुन्यानी बहुत अच्छे इतिहासकार हैं, बहुत बड़े इतिहासकार हैं, किसी पार्टी से उनका कोई ताल्लुक नहीं है। वो लिखते हैं कि पेशवा शासन की नीतियाँ ब्राह्मणवादी थीं, शूद्रों को, पहले शूद्र बोलते थे अब दलित में कहते हैं, शूद्रों को थूकने के लिए अपने गले में हांडी लटकाना ज़रूरी था ताकि उनके नाक मुंह से गंदगी ना फैले। कल्पना कीजिए, गले में हांडी लटकी हुई है ताकि उनके नाक और मुंह से गंदगी ना फैले। साथ ही कमर पर झाड़ू बांधना ज़रूरी था, कमर पर पीछे की ओर से झाड़ू बांधा जाता था ये, ताकि जिस धरती पर पड़े उनके पैरों के निशान मिटते रहें। ये दलितों पर कठोर अत्याचार के सबसे चरम बिंदु की ओर इशारा करता है। क्या अंग्रेज ब्राह्मणवादी कठोरता को मिटाने के लिए बाजीराव के खिलाफ लड़े थे? बिल्कुल नहीं, वो अपना साम्राज्य बढ़ा रहे थे, अपना धंधा, अपनी तिजारत, अपना बिजनेस बढ़ा रहे थे। उधर महार जो हैं वो अपने मालिक के प्रति निष्ठा की भावना से अंग्रेज़ों के लिए लड़ रहे थे, अपने प्रभाव क्षेत्र का विस्तार अंग्रेज़ कर रहे थे, और महार जो हैं मालिक के प्रति निष्ठा की भावना दिखाने के लिए लड़ रहे थे। यहाँ पर एक साफ दिखाई देता है कि समाज में ब्राह्मणवादी ताकतों का वर्चस्व, उनका हाथ कितना ऊंचा था। अब इस वक्त एक आने वाले चुनाव से पहले एक नया कॉम्बिनेशन उभर कर सामने आ रहा है, MMM, महार, मराठा, मुस्लिम। इसी को तोड़ने की एक कोशिश की गई पिछले साल, इसी को तोड़ने की कोशिश की गई इस साल जब 1200 ऐसे लोगों को गिरफ्तार कर लिया गया जिनसे कुछ था कि ये एक्टिविस्ट हैं, दलित एक्टिविस्ट हैं, प्रिवेंटिव कस्टडी में ले लिया गया। कबीर कला मंच, समता कला मंच, इस तरह की संस्थाओं को भीमा कोरेगांव जाने की इजाज़त ही नहीं दी गई। कहने का मतलब यह है कि इस वक्त आने वाले चुनाव से पहले जाति के नाम पर लोग इकट्ठे हो रहे हैं, धर्म के नाम पर तोड़ने की कोशिश हो रही है। अपने आप में दिलचस्प शब्द का इस्तेमाल तो मैं नहीं कहूँगा, अपने आप में ये बहुत अनोखी और दुख की बात है कि हम भारतीय शब्द का इस्तेमाल भूल गए हैं।
अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आए तो शेयर कीजिए। अगर ये वीडियो आप फेसबुक पर देख रहे हैं तो आप हमें लाइक कर सकते हैं और ट्विटर पर फॉलो कर सकते हैं, और यूट्यूब पर हमारे वीडियोस देखने के लिए आप हमें सब्सक्राइब कर सकते हैं।